Om Shant. Objectum Bulli, 21st November 1984. अभी आपके अपने आप को देखो कि हम दिव्य दर्शनीय मूर्त दर्शन योग्य सर्व श्रृंगार संपन्न बने हैं, पाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित है। पाप कटेश्वर व पाप हारिणी तब बन सकते हैं जब याद की ज्वाला स्वरूप बनेंगे, ऐसे बने हैं। दर्शन के लिए पर्दा खोलते हैं, पर्दा हटता है और दर्शन होता है। ऐसे संपन्न दर्शनीय स्वरूप बने हो जो समय का पर्दा हट जाए और आप दिव्य दर्शनीय मूर्त प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष हो जाओ। वह दर्शनीय मूर्त अभी तक संपन्न सहज रहे हो। दर्शन सदा संपन्न स्वरूप का होता है, तो ऐसे तैयार हो वह होना है। वह यही सोचते हो कि समय आएगा तब तैयार होंगे। जो समय पर तैयार होंगे तो वह अपनी ही तैयारी में होंगे, वह दर्शनीय मूर्त बनेंगे। वह स्वप्रति रहेंगे न कि विश्वप्रति। वह स्व कल्याणकारी होंगे और वह विश्व कल्याणकारी। अंत का टाइटल विश्व कल्याणकारी है न कि स्व कल्याणकारी। स्व कल्याणकारी सो विश्व कल्याणकारी, डबल कार्य करने वाले ही डबल ताजधारी बनेंगे। सिर्फ स्व कल्याणकारी डबल ताजधारी नहीं बन सकते, राज्य में आ सकते हैं लेकिन राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। तो समय प्रमाण अभी पुरुषार्थ की गति तीव्र है। अभी याद की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ाओ, और तीव्र गति से बढ़ाओ। तो पिछली बार देखा था मैं कौन हूँ, दिव्य दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ। दर्शन के लिए पर्दा खोलते हैं, पर्दा हटता है, दर्शन होता है। ऐसे संपन्न दर्शनीय स्वरूप बने हो जो समय का पर्दा हट जाए और आप दिव्य दर्शनीय मूर्त प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष हो जाओ। तो दिव्य दर्शनीय मूर्त आत्माओं की क्या निशानी है? 16। कौन कौन सी? सबसे पहले तो वो सुंदर होती है मूर्ति, दूसरा आकर्षक होती है, तीसरा उसमें दिव्यता होता है, चौथा उसमें हर्षित मुख होती है, पांचवी उसमें आभूषण होते हैं, छठवा उसके वस्त्र परिधान, सातवा शक्ति संपन्न होती है, आठवा वो भक्त वत्सल होती है और असुर संहारिणी होती है। उसके बाद वरदानी मूर्त होती है, उसमें वरदान देने का सामर्थ्य होता है और साक्षात्कार कराने की शक्ति होती है। मुकुट माला भुजा अस्त्र शस्त्र वाहन और लास्ट प्रभा मंडल। तो दिव्य दर्शनीय मूर्त जैसे मूर्ति के 16 बातें दिखाई थी, वैसे हम में भी क्या हो, ये सारी चीजें हो। तो मैं दिव्य दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ। अभी क्या करो? तो समय प्रभान अभी पुरुषार्थ की गति तीव्र है। अभी याद की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ाओ। अभी साधारण स्वरूप में है, इसलिए कभी भी परिस्थितियों के वश धोखा मिल जाएगा। परिस्थितियां क्या करती है? धोखा देती है। शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो क्या होगा? परिस्थितियां क्या करती है? धोखा देती है, याद को नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। परंतु परिस्थितियां ही क्या करती है, विघ्न ही क्या करते हैं। स्लोगन था ना अभी, क्या था, क्या होता है? विघ्न से बलवान बनती है आत्मा, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। कभी भी परिस्थितियों के वश धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो प्रभाकर भाई क्या होगा शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो शक्ति स्वरूप बन जाएंगे और शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेवा के झंझट से भी परे हो जाओ। जब सेवा में क्या क्यों तू मैं तेरा मेरा आ जाता है तो सेवा भी क्या हो जाती है झंझट। तो इस झंझट से भी परे हो जाओ। सेवा के पीछे स्वमान न भूलो। सेवा के पीछे स्वमान न भूलो। इसको याद कर लो वाक्य को, बहुत पावरफुल लाइन है। सेवा के पीछे स्वमान न भूलो। जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं तो उस सेवा में क्या सफलता कम और स्वयं को और औरों को भी परेशानी ज्यादा। नाम की सेवा नहीं करो लेकिन किसकी सेवा करो, काम की सेवा करो। इसको कहा जाता है शक्ति संपन्न सेवा। तो ऐसे नाजुक समय आने हैं जिसमें याद की शक्ति ही सेफ्टी का साधन है। ऐसे याद की शक्ति आपके चारों ओर सर्व शस्त्रधारी सेफ्टी के साधन है। इसलिए सदा स्वयं को, सेवा स्थान को व प्रकृति के प्रवृत्ति के स्थान को और आने वाले सर्विस सेंटर्स के विद्यार्थियों को याद की शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल में लाओ। अभी साधारण याद की स्थिति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती। तो क्या करो, शक्तिशाली याद की भट्टी एक, दूसरा शक्ति संपन्न सेवा। शक्तिशाली याद की भट्टी करो। याद का आधार क्या है, कोर्स में क्या सुनाते हैं हम, चार बातें सुनाते हैं 7 डेज के कोर्स में। सबसे पहले परिचय, दूसरा प्यार। याद किसकी, किसको, किसको की जाती है, किसकी हो सकती है। सबसे पहले तो परिचय चाहिए, दूसरा प्यार चाहिए, तीसरा संबंध और चौथा प्राप्ति। अगर ये चार चीजें हैं किसी से तो उस व्यक्ति की याद रहेगी। अगर परमात्मा को याद करना है तो क्या चाहिए, कोर्स वालों को क्या कहते हैं हम, जिज्ञासियों को, परमात्मा का सबसे पहले परिचय चाहिए, उससे प्यार चाहिए, तीसरा उससे संबंध चाहिए और चौथा उससे क्या प्राप्ति हो इसका ज्ञान चाहिए। ये तो हो गया कोर्स वालों के लिए। अभी इधर शक्तिशाली याद के लिए फिर क्या चाहिए, यही चार बातें। परंतु अभी ये चार बातों में क्या संपूर्ण परिचय है। शक्तिशाली याद के लिए क्या चाहिए, संपूर्ण परिचय। शक्तिशाली याद के लिए संपूर्ण प्यार। शक्तिशाली याद के लिए सर्व संबंध और शक्तिशाली याद के लिए संपूर्ण और सर्व प्राप्तियां सदा। ये चार चीजें चाहिए। पहली पॉइंट संपूर्ण परिचय। पहली पॉइंट है संपूर्ण परिचय। क्या हमने उसे जान लिया है, अंत तक जान जाएंगे। और एक खुदा क्या गीत है, तू है रहता कहां तेरा क्या नाम है, गीत है ना, एक खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहां तेरा क्या काम है। दो, सबसे पहला है संपूर्ण परिचय। तो क्या हमने उसे जान लिया है, उसको जान लिया तभी कहा जा सकता है जब उसने अब तक जो कुछ कहा है वो हमने समझा है, और उसने जो कहा है उसे क्या कहा जाता है, उसे मुरली कहा जाता है। तो वो सारी मुरलियां पढ़कर हो गई क्या, जब हो गई होगी और समझ लिया होगा और एक एक वाक्य को समझा होगा, तब कहा जाएगा कि उसका हमें संपूर्ण परिचय है। तो पहला आधार है संपूर्ण परिचय, और उसके लिए चाहिए गहन अध्ययन। तब तक वो शक्तिशाली याद नहीं हो सकती। तो एक तो है परिचय, दूसरा है संपूर्ण प्रेम। हम जिसे प्रेम कह रहे हैं, क्या वही प्रेम है? परमात्मा प्रेम क्या होता है? आशीष भाई, प्रभु प्रेम किसको कहेंगे? उसको जो अच्छा लगता है वो मुझे भी अच्छा लगे, वो मुझे करना चाहिए। और प्यार अर्थात समानता, जिसका जिससे प्यार है वो धीरे धीरे उसके समान बनते जाता है। जो जो उसमें है वो हम में आने लगता है। तो प्यार अर्थात समानता, प्यार है तभी कहा जाएगा जब हम भी उसके समान बनते जाएंगे। तो संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण प्रेम अर्थात संपूर्ण समर्पण। प्रेम तीसरा सर्व संबंध, सर्व संबंधी तेरे सम कौन है। सर्व संबंध एक से जोड़ने का अभ्यास। उसके लिए और एक चीज करनी पड़ेगी कि यहाँ के जो सारे संबंध है वो सब कैसे अनुभव हो, निरस असार और व्यर्थ। वो सारे इस जन्म के संबंध है और आत्मा उसी में फंस जाती है और उन्हीं के द्वारा परिस्थितियां है और उन्हीं परिस्थितियों में आत्मा को धोखा प्राप्त होता है, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों में आत्मा इस ज्ञान को विस्मृत हो जाती है। ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ महावाक्य है कि देह सहित देह के सर्व संबंध को भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। वो सारे इस जन्म के संबंध है और इसी को सर्वस्व नहीं समझ लेना है और उसी के पीछे सुख और शांति और पुरुषार्थ को नहीं गवा देना है, क्योंकि वो इस जन्म के संबंध है सारे। तो संबंध, यहां से संबंध सारे हट जाए और एक तरफ लग जाए। एक से सर्व संबंधों का अनुभव, एक से सर्व रसों का अनुभव। तो संबंध। और चौथा प्राप्तियां। कौन सी प्राप्तियां? स्थूल सूक्ष्म सभी। स्थूल प्राप्ति भी उसी से और सूक्ष्म भी उसी से। सूक्ष्म तो हम बात करते ही है, परंतु स्थूल प्राप्तियों के लिए भी उसी पर निर्भर रहना। अगर वो दे तो ठीक, ना दे तो और ही अच्छा, शायद उसकी इच्छा नहीं है। स्थूल प्राप्तियों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सब जानता है किसको क्या चाहिए और जिसको जो चाहिए। सूक्ष्म तो है ही सारी सुख शांति पवित्रता। सूक्ष्म जिसके पास है स्थूल पीछे पीछे आ जाएगी, पर परिस्थितियां कभी ऐसी होगी कि स्थूल नहीं भी आए, वो भी परीक्षा है कि जिसमें स्थूल प्राप्ति नहीं होगी। और उस न होने की अवस्था में भी वही प्यार रहे। तो चार आधार है, ये तो हम कोर्स वालों को कहते हैं। अभी दूसरे आधार, शक्तिशाली याद के लिए क्या क्या चाहिए, इसकी कुछ दूसरी पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहले तो संपूर्ण ज्ञान, या फिर क्या कहा, द्वितीया, ज्ञान बुद्धि में हो। नौ बजे तक जो है ना वो हम स्विमिंग कैसे करना इसकी किताबें पढ़ रहे हैं, तैरना कैसे है, या जब तक सेवा में उतरते नहीं तब तक, ये केवल किताबें हैं। किस बात की? तैरना कैसे है, इसी को तैरना नहीं समझ लेना। ये केवल किताबें है, सुनना सुनाना, भाषण देना, पढ़ना पढ़ाना, याद करना, नोट्स बनाना, लिखना, ये सारा ट्रेनिंग मात्र है। किसका? स्विमिंग कैसे किया जाए, इसको ही स्विमिंग करना नहीं समझना है। स्विमिंग यहाँ से जाके फिर करना है, और वहां पे फिर डूबेंगे तो फिर शायद ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। इस ट्रेनिंग को ही शायद स्विमिंग समझ लिया है। स्विमिंग उधर है, और वहां जाकर फिर इस ज्ञान की, ये जो कुछ किया, अगर वहां जाकर डूब गए, इसका अर्थ स्विमिंग अभी तक सीखी नहीं है। सीखने को ही क्या समझ लिया था? क्रिया, एक्चुअल फाइनल, वैसा नहीं है, ये ट्रेनिंग है। जैसे ही कर्म में उतरते, इस ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप वहां है। तो सबसे पहला आधार है शक्तिशाली। क्या शब्द बाबा ने कहा? शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेफ्टी का साधन है शक्तिशाली याद की भट्टी। तो सबसे पहला है संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान की स्मृति, ये ज्ञान बुद्धि में हो। योग का आधार ज्ञान है, और ज्ञान का आधार भी, ज्ञान का आधार योग है, दोनों पूरक है। तो सबसे पहले ज्ञान, दूसरा श्रीमत, और श्रीमत में भी संपूर्ण प्यूरिटी। अगर शक्तिशाली याद चाहिए तो संपूर्ण ज्ञान चाहिए, दूसरा संपूर्ण श्रीमत, और उसमें भी सबसे पहली श्रीमत संपूर्ण पवित्रता। ये ज्ञान और ये योग की साधना केवल पवित्र बुद्धि कर सकती है। जिस बुद्धि में अपवित्रता है और अशुद्धि है, घृणा, ईर्ष्या या लगाव या विकारों के अंश, अभी अभी बाबा ने कहा है विकर्म है, जहां पर विकर्म की परिभाषा, संडे की मुरली, विकर्म की क्या परिभाषा है? विकर्म की परिभाषा दी है बाबा ने, कौन सी? विकारों के अंश के वशीभूत हो जो भी कर्म किया जाता है वो विकर्म है। सिंफुल एक्ट, सिंफुल एक्टिविटी, सिंफुल एक्शन। विकार का जहां अंश भी है और उसके वशीभूत, उसके इन्फ्लुएंस में, उसके अधीन हो कोई भी कर्म किया जाता है, फिर वो संकल्प है या भाव भावना है या बोल है या वृत्ति है, दृष्टि है या कर्म है, वो सभी या स्वप्न है, वो सभी विकर्म है। विकर्मा जीत एक शब्द है, दूसरा है विकर्म संन्यास। संन्यास किसका करना है? नया संन्यास है ये, विकर्म संन्यास। घर का नहीं, वस्तुओं का नहीं, विकर्म का संन्यास, उसका ये नव संन्यास है, विकर्मों का संन्यास करना। ये विकर्म की परिभाषा बाबा ने दी। इसके लिए तुम्हें क्या बनना है? सुकर्मा, उसकी परिभाषा, जो कर्म श्रीमत के आधार पर किए जाते हैं, एक तो ये, दूसरे जो याद में किए जाते हैं वो सभी सुकर्म है, तीसरा जो आत्माभिमानी स्थिति में किए जाते हैं वो सभी सुकर्म है, चौथा जो श्रीमत हो गया ना, श्रीमत याद आत्माभिमानी स्थिति, और चौथा लवलीन याद में आ गया, जो डिटेच्ड होकर किए जाते हैं, जो निस्वार्थ होकर किए जाते हैं, निरंकारी होकर किए जाते हैं, निमित्त भाव से किए जाते हैं, निर्माण से चित्त से किए जाते हैं, वो सभी कर्म जो है वो सुकर्म है। तो सुकर्मों की ये चार परिभाषा है। एक परिभाषा तो उस मुरली में आ गई कि श्रीमत, दूसरी है आत्माभिमानी स्थिति में किए जाने वाले सारे कर्म, विकर्म नहीं हो सकते, तीसरी जो याद में किए जाते हैं वो विकर्म नहीं हो सकते, और चौथा ये बहुत सारी बातें, निस्वार्थ हो, निरंकारिता हो, निर्मल बोल, निर्मल वाणी, निर्मल निर्माण चित्त, ये सब से जो भी किए जाते हैं वो, और डिटैचमेंट, उसमें आसक्ति नहीं, उसमें लगाव नहीं, फल की अभिलाषा नहीं, कर दिया और पूरा हुआ, डिटैच हो गए, वो सारे कर्म कैसे है, सुकर्म है। और तीसरा कर्म कौन सा, चार प्रकार के कर्म बताए थे, साधारण कर्म, और चौथा व्यर्थ कर्म, उसका भी त्याग। ऐसे ही चालू भाषा, तो पहला आधार है श्रीमत्, पहला आधार है संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान यदि है तो योग होगा। लोग कहते हैं योग ही नहीं लगता, क्योंकि ज्ञान को ही नहीं समझे। जितनी गहराई से उसे समझना चाहिए उतनी गहराई से उसे नहीं समझा। सत ही ज्ञान है, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर का वो ज्ञान जो है वो एब्जॉर्प्शन हुआ है उसका, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। दो शब्द है, एक है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब अर्थात ऊपर ऊपर रहना। जैसे पानी जो है अगर इस कांच पर रखा जाए तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, पर ये अगर स्पंज है तो उसको खींच लेता है, वो है एब्जॉर्प्शन। क्या ये ज्ञान को हमने एब्जॉर्ब किया है या केवल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ऊपर ऊपर है। तीसरा वैराग, शक्तिशाली याद के लिए वैराग की अवस्था चाहिए। अगर मन कहीं ना कहीं अटका है और किसी ना किसी में राग है तो वो खींचेगा राग। इसके लिए निरंतर एक विराग, वितराग, वैराग का भाव, यहां का कुछ नहीं चाहिए। जो भी चीजें मान सम्मान प्रतिष्ठा स्तुति प्रशंसा, अगर प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा करना छोड़ दो, ऐसा थोड़ी था सुनना छोड़ दो। अच्छा बताओ थोड़ा, जो था वो कल ही तो था और सबसे लास्ट में था, ऐसा नहीं पहले था, लास्ट में था तो ज्यादा याद रहना चाहिए, क्योंकि पीछे वही है ना। करने का अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, अच्छा एक्सपेक्टेशन की डिजायर, इच्छा। अगर प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। क्यों क्यों त्याग कर दे, प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग क्यों करे निखिलेश भाई, क्यों करे त्याग, अच्छी इच्छा है तो अच्छा तो है, पर क्या नहीं फस, क्यों फंसेंगे, अच्छी इच्छा है, हमारी इच्छा है हमारी प्रशंसा हो, और प्रशंसा हो गई तो और प्रसन्न हो गए, तो आप बोलो काय कहीं को, तो और प्रशंसा मिलेगी तो फिर अच्छी बात है ना। हाँ अच्छा, प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग करो, क्यों और बताओ, नहीं हुई तो फिर दुख कितना होगा। हमने सोचा हमारी बहुत प्रशंसा होने वाली और गए और हमारी हुई नहीं तो कितना हृदय विदीर्ण हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा एक तो ये पॉइंट है, इसलिए प्रशंसा सुनने की इच्छा छोड़ो। दूसरा बोला है ना मुरली में, इसके लिए पॉइंट्स बताओ, और ग्लानी भी हो सकती है। हाँ ये उससे सेकंड पावरफुल पॉइंट है, गए थे प्रशंसा सुनने की आश से और हुई ग्लानी तो ज्यादा ही दुख है। तीसरा गए थे प्रशंसा सुनने के लिए स्वयं की और हो रही है दूसरे की। हम गए थे स्वयं की प्रशंसा सुनने और उल्टा ही हो गया, किसी और की हो रही है। वो वाली पॉइंट नहीं चल रही है, पॉइंट ये चल रही है कि प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग क्यों करो। एक तो बताया कि अहंकार जागृत आ सकता है, चौथा चस्का प्रशंसा सुनने का चस्का लग गया फिर वही अच्छा लगता है, कानों में सुमधुर महिमा जब होती है तो कितना अच्छा लगता है। आहा, गदगद गदगद अंदर आंखें बंद कर कर अंदर ही अंदर कमलेश गदगद 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 और प्रशंसा क्यों नहीं सुननी, सुनने की प्रकाश भाई क्यों त्याग कर दो प्रशंसा सुनने के लिए क्या आदत का पता दिया, चस्का लग जाता है। आदत से भी पावरफुल शब्द है वो चस्का, आदत तो छोटा शब्द है। अभी अगर प्रशंसा नहीं पर भक्त यहाँ अगर हो रही है तो कम थोड़ी ना कर सकते हैं। अगले संडे की मुरली में बोला है कुछ आत्माओं की यहाँ प्रशंसा होगी, सम्मान यहाँ मिलेगा, पर उसका भी त्याग, वो परिभाषा है सर्वंश त्यागी की। क्या और क्यों त्याग कर दो, हम टॉपिक से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। व्यक्तियों के साथ अटैचमेंट बढ़ती जाएगी, अच्छा पॉइंट है ये कि व्यक्तियों के साथ अटैचमेंट बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिसने हमारी प्रशंसा की फिर वो हमारा परम मित्र जैसा दिखाई देगा, और जिसने हमारी नहीं की वो फिर हमारा शत्रु, शत्रु तो नहीं तो घृणा तो रहेगी या किनारा तो करेंगे उससे, और जो ज्यादा प्रशंसा करता है उनसे ज्यादा मिलेंगे, उनसे ज्यादा दोस्ती, और फिर नए हिसाब किताब। उस दिन भी कहा था ना लगाव झुकाव में हिसाब किताब है, फिर सेंसिबल तो हो सकते पर इनसेंसिबल नहीं हो सकते, सक्सेसफुल तो हो सकते परंतु विघ्न विनाशक नहीं हो सकते। उनको लगेगा हम बढ़ रहे परंतु हिसाब किताब में बढ़ा जा रहा है, पुरुषार्थ में नहीं बढ़ रहे। स्पीकर तो बन सकते हैं परंतु पुरुषार्थ की स्पीड नहीं आ सकती, ये सारी चीजें हो जाएगी, ये लेन देन होगा आत्मा के साथ हिसाब किताब, जिससे लगाव झुकाव है। तो जो प्रशंसा करता है वो बड़ा मीठा लगता है, हित चिंतक लगता है, अच्छा लगता है। प्रशंसा करनी चाहिए पर करते समय भी वो सच्ची प्रशंसा हो, फ्लैटरी ना हो, जिसको चाटुकारिता नहीं हो, खुशामद ना हो, चापलूसी ना हो, साइकोफेंट कहते हैं इंग्लिश में, वो साइकोफेंसी ना हो उसमें। हाँ दूसरा और एक पॉइंट है ये, प्रशंसा सुन लेना और खुश हो जाना ये है कच्चा फल खा लेना। कितनी पावरफुल वरदान स्लोगन था कल का, चिंतनीय मंथनीय, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है जिसके प्रभाव में आत्मा आ जाती है। और प्रशंसा सुनने में जिसको बहुत खुशी है उसको जब अपमान होगा तब दुख भी उतना ज्यादा होगा। प्रशंसा सुनते समय खुशी बहुत, तो निंदा सुनते समय दुख जितना एवरेज होता है बाकियों को उससे थोड़ा ज्यादा। प्रशंसा हो रही है उस समय क्या करना चाहिए, एक बार इस पर बहुत बड़ी चर्चा यहाँ हो चुकी है, क्या क्या पॉइंट्स है, बहुत सारी पॉइंट्स है, निकाली भी है शायद, टाइप भी की है सुशील भाई ने, बहुत सारी पॉइंट्स है क्या क्या करना चाहिए, वो किसी और क्लास में, वो अगले क्लास में। प्रशंसा सुन जब हो रही है, कंटिन्यूस हो ही रही है, रुकी नहीं रहा है कोई। हाँ चलो कमलेश के लिए टॉपिक, जब प्रशंसा बहुत ही हो रही हो तो क्या किया जाए। तो जब प्रशंसा हो रही हो तो क्या किया जाए, कौन से संकल्प लाए जाए मन में, कौन से भाव उठने चाहिए, और नहीं वो तो पॉइंट्स है, अभी वो पॉइंट नहीं पूछ रहे। एक हमें याद है, हम एक बार कहीं गए थे तो आधे घंटे का टाइम था भाषण देने का, उसमें से वो बहन ने 20 मिनट खुद ही ले लिए। और हमने फिर कहा अभी हम क्या बोले, 10 मिनट बच गए खाली, मतलब 20 मिनट का टाइम ले लिया, बोलना था टोटल टाइम जो दिया था आधे घंटे का 20 मिनट इंट्रोडक्शन, और स्पीकर को बोलने के लिए 10 मिनट। नहीं वो कुछ और ही बोलते रहते यहाँ वहाँ की बातें जिसका कोई संबंध नहीं है, कुछ मतलब, और उसमें स्पीकर का इंट्रोडक्शन देना एक चीज है पर अपना इंट्रोडक्शन 10 मिनट्स। हाँ मतलब अपनी ही महिमा वो कि मैंने भी क्या क्या किया है, इसने क्या किया और फिर मैंने भी क्या क्या किया, मतलब वो 20 मिनट उसमें चले गए। इंट्रोडक्शन एक मिनट का हो बस, शॉर्ट। साथ है सबसे पहला आधार है ज्ञान, दूसरा आधार है पहला श्रीमत पवित्रता, ज्ञान वैराग, चौथा एकांत मौन और अंतर्मुक्ता, तीनों चीजें एक साथ। याद के लिए तीनों ही चीजें चाहिए, एकांत भी चाहिए, मौन भी चाहिए और अंतर्मुक्ता भी चाहिए। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जहां पर नहीं है वहां पर याद नहीं हो सकती। जो व्यक्ति बाह्यमुखी है, शब्द शब्द बहुत है जिसके जीवन में, मौन नहीं है, शब्द ही ज्यादा है, वहां पर याद कैसे हो सकती है? अंतर्मुक्ता की बजाय बाह्यमुक्ता है। अगला आधार है एकाग्रता। शक्तिशाली याद के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। बुद्धि परम धाम में कितना समय हमारी टिकती है बिना कोई संकल्प के, किसी के भी संकल्प के बिना, कोई भी संकल्प नहीं, सारे संकल्प समाप्त, ऐसी अवस्था में हम कितना समय रहते हैं? वो आधार है कि हमारी योग की क्या स्थिति है, या योग में बैठ के बस इधर उधर के संकल्प चालू है, सेवाओं के संकल्प चालू है, व्यक्तियों की यादें आ रही है, या किसी को सकाश देने का सोच रहे कंटिन्यूस, वो निचले तल की याद है। याद अर्थात परमधाम में हम कितना समय टिक जाते हैं, कितना समय अशरीर होते हैं और कितना जल्दी शरीर से डिटैच होते हैं, टाइम कितना लगता है परमधाम की उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, कितना शरीर में आना और शरीर से बाहर निकलना, ये अभ्यास कितना पावरफुल है। तो एकाग्रता। अगला आधार है संपूर्ण ईश्वरीय प्रेम, संपूर्ण प्रभु प्रेम, परमात्मा प्रेम जो है उसकी किस तरह की धारा बह रही है हृदय में, कितना वो प्यार है, वस्तुओं से प्यार ज्यादा है, वैभव से प्यार ज्यादा है, संसार से प्यार ज्यादा है कि भगवान से प्यार ज्यादा है। वो संपूर्ण प्रेम की अवस्था जब होगी तब याद संपूर्ण होगी। अगला आधार है संपूर्ण त्याग। त्याग का वीकली कोर्स चालू है। सबसे पहली मुरली थी भाग्य और त्याग के ऊपर, मुरली पूरी भाग्य के ऊपर थी। दूसरा मुरली थी देहभान का त्याग। तीसरी मुरली थी स्वराज्य अधिकारी, जो कर्मेंद्रियों के जो आकर्षण है उनका त्याग, मालिक, देह के मालिक, देह के दास से देह के मालिक बन गए, अधीनता के संस्कार समाप्त। चौथी मुरली थी देह सहित देह के संबंध। पांचवी मुरली थी त्याग, व्यर्थ का त्याग, विकर्म का त्याग, उसी का विस्तार था, साधारण कर्म, व्यर्थ और विकर्म, इन सब का त्याग और सुकर्मी बनना है। अगली मुरली है त्यागी, महात्यागी, सर्वंश त्यागी, सर्वंश त्यागी, उसमें पहले दो सुनाए, सर्वंश त्यागी फिर कभी सुनाएंगे, ऐसा बाबा ने कहा है। तो ये वीकली कोर्स ऑफ रिनंसिएशन, इस पर एक किताब भी है जिसपे पूरा संकलन किया हुआ है। जब ये मुरलियां चली थी त्याग की, सबसे पावरफुल मुरलियां है त्याग की, जितना त्याग का इन मुरलियों में बोला है बाबा ने और कहीं नहीं बोला है, सारी की सारी मुरलियां। ये पूरी होने के बाद में यहाँ एक बार रिविजन होगा सारी मुरलियों का, सारी त्याग का वीकली सप्ताह कोर्स रिनंसिएशन त्याग का। कितने हो गए? आठ हो गए, छह हो गए, सात हो गए, आठवां कौन सा? शक्तिशाली याद के लिए, शक्तिशाली याद की भट्टी और आधार त्याग कहा, वैराग कहा, अंतर्मुखी, मौन, एकांत कहा, एकाग्रता कहा, प्रभु प्रेम कहा, प्यूरिटी कहा, और एक है क्या हो सकता है? याद के लिए प्राप्तियों की स्मृति, और वो तो उन चार वो दूसरे बता दिए हमने ऑलरेडी, परिचय, संबंध, प्रेम और प्राप्ति, यहाँ दूसरा और क्या चाहिए प्रभाकर भाई? याद के लिए इतने में तो हो ही जाएगा, फिर भी एक और बता दो इतने में क्या, वैसे तो एक में ही हो जाएगा। दूसरों को मुरली, एक बहुत सुंदर बात अचानक हम कोई आज सुबह अमृत वेला करते करते याद आई, मतलब बुद्धि में आई कि ज्ञान जो है दूसरों की मुक्ति के लिए पूरी मुरली का रिवीजन कराना करे और कराते हम, पर स्वयं की मुक्ति के लिए एक ही महावाक्य काफी है। पूरी मुरली का एक महावाक्य काफी है खुद की मुक्ति के लिए, दूसरों के लिए पूरी चार पेज की मुरली सुनाने के लिए, पर स्वयं के कल्याण के लिए एक महावाक्य इज इनफ जिससे हम छूट जाए। और एक बात बताओ आठवीं क्या हो सकती है? एक हो जाना। उस एक हो जाने के लिए क्या? प्रभु प्रेम। प्रभु प्रेम का ना संपूर्ण ईश्वरीय प्रेम। हाँ अशोक भाई, याद के लिए क्या जरूरी है? पवित्रता हो गया वो, साक्षी दृष्टा, और भी कुछ चाहिए? एक पॉइंट है। ओम शांति।